Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
हमने कहा चलो आओ, कथा समाप्त हुई, कमरे में गए तो वो भी आ गई, तो और भक्त भी आ गए। हमने कहा माता जी आप क्या कह रही थी, कुछ कहने के लिए आई थी? बोले सब चले जाएं तब बात करेंगे। हमने कहा अच्छा भाई जाओ आप, तो सब लोग चले गए। हमने कहा बोलो आप क्या है। हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। पंजाबी लोग विद्वान नहीं बोल पाते, हो हंसी आती थी बचपन में, विद्वान नहीं बोलते, विद्वावान। तो हंसी आती थी हम लोगों का, हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे पंजाबी जब बोलते हैं ना, छांदों के उपनिषद नहीं बोल सकते, छंदोग्या उपनिषद ऐसा, वो अकार को ठीक से नहीं बोल पाते। पहला अक्षर यदि हलंत है तो बोल ही नहीं पाएंगे। वो स्कूल हम बोलते हैं, वो लोग स्कूल नहीं बोलते, शकूल। सीधे आधा सौ को पूरे ही सब बोल देते हैं शकूल, स्कूल नहीं बोलेंगे। तो बड़ा उच्चारण में, संस्कृत उच्चारण में ये भी जितना आप साउथ जाओ उतना ही स्पष्ट उच्चारण है, और जितना नॉर्थ जाओ उतना ही वो उर्दू का थोड़ा सा प्रभाव नॉर्थ में दिखता है, इसलिए भाषा बिगड़ जाती है, लवज उच्चारण में फर्क पड़ता है। तो उसका कारण वही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा खूब प्रशंसा कर दी, तो हम तो वाह फूले न समाए, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। तो हमने कहा अच्छा भाई कहो। अच्छा मां की क्या क्या कहने के लिए, क्या कहना है तुमको? माले महाराज आप ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, बहू कैसे आएगी ये आप बता दीजिए, उसके लिए मैं सर्वज्ञ हूं। बोलो, अब उसने प्रशंसा कर ली तो उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं है? इतना बड़ा ऊंचे सिंहासन में रख दिया, वहां पहुंचने के बाद ऐसे सीधा नीचे कूदना तो नहीं चाहिए। अपनी मर्यादा में रहते हुए हमने भी नाटक शुरू किए, हमने आंख बंद कर ली, सीधा रीढ़ के हड्डी कम कर सीधा किया, कमर सीधा कर ली, आंख बंद कर ली, थोड़ा सा लंबा श्वास ले लिया। लगभग 5 मिनट मौन रहने के बाद नाटक ही तो था। उसके बाद मैंने कहा माता जी हमने देख लिया, सब पता लगा लिया, हम सब जान गए, बहू आएगी, जैसे भी आएगी बहू तुम्हारे कल्याण करने वाली आएगी, मां तुम्हारी कल्याण करने वाली आएगी। महाराज कल्याण का मतलब? तो हमने कहा तुम्हारा हित ही करने वाली आएगी, कल्याण ही करने वाली आएगी। तो कैसे चाहती हो? बोले हम तो सेवा करने वाली चाहते हैं, प्रेम करने वाली, आदर करने वाली। तुम लोग भी तो ऐसे चाहते हो ना, गलत है वो। हाँ गलत है, इतना चाहना ये गलत है सर्वथा। महाराज यदि ऐसी बहू आई तो ठीक है, कहीं झगड़ा करने वाली, अशांति करने वाली, मारपीट करने वाली वो आई तो फिर घर नरक बना देगी। महाराज हमने कहा बहू जैसे भी आएगी तुम्हारा कल्याण करने वाली आएगी, चिंता न करो। एक खराब बहू आ गई तो कैसे हमारा कल्याण होगा महाराज? तो हमने उसको एक उदाहरण दिया, आप भी समझ लो। जब तुम अकेले घर में होते हो, मान लो कि तुम अकेले घर में हो, कोई नहीं है, तब उस समय अकेले अवस्था में तुम बीमार पड़ गए, तुमको बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तुम बीमार पड़ गए। परिणाम हो गया कि हफ्तों तुम नहा नहीं पा रहे हो, कपड़े नहीं धो पा रहे हो, घर में झाड़ू पोछा नहीं कर पा रहे हो, बर्तन मांडे नहीं कर पा रहे हो तो घर चारों तरफ से गंदगी से भरा हुआ है, क्यों अकेले हो तुम? इतने में किसी को पता चला और बाहर का व्यक्ति आया, उसने देखा घर बहुत गंदगी से भरा हुआ है। उसने कहा कि मां, मैं आपके ये घर की सफाई कर दूं, बर्तन मांज दूं, कपड़े धो दूं, झाड़ू कर दूं, पोछा कर दूं, तो तुम खुशी से उसको स्वीकृति दोगी कि नहीं उस अवस्था में? क्योंकि जब खुद ही करने की क्षमता जहां नहीं है तो कोई यदि करने आ जाता है तो हम प्रसन्नता पूर्वक उसको वो करने की अनुमति भी दे देते हैं, और कर लेने के बाद वो झाड़ू लगा के कचरा सब बाहर निकाल देती है, बर्तन भांडे सब कर कार के जब कहते मां अब जाऊं मैं, तो हम उसको स्वीकृति के साथ साथ धन्यवाद भी देंगे। देंगे कि नहीं है? इसी तरह यदि कोई दुष्ट बहू आई तुम्हारे घर में, तो मैंने उसको समझाया, यदि कोई दुष्ट बहू आई तो जन्म जन्मांतर के जो तुमने जानकर न जानकर किए हुए सारे पाप तुम्हारे अंदर गंदगी की तरह पड़े हुए हैं। वो दुष्ट बहू क्या करती है पता है? तुमको रात दिन झगड़ा करके परेशान करके वो कचरा यानी पाप कर्म निकालती है। हाँ, क्योंकि कर्म का फल भोगे बिना समाप्त नहीं होता। यदि वो तुमको सताएगी नहीं, तुम दुखी नहीं होगे, पीड़ित नहीं होगे, कष्ट में नहीं रहोगे, तो पाप निकलेगा नहीं। पाप निकलेगा जब तब तुमको कष्ट देगा ही देगा। तुमको प्रसन्नता देकर पाप कभी नहीं जाता है, रुलाकर पाप जाता है। तुम्हें आराम देकर पाप कभी भी निकलता नहीं है तुम्हारा पाप, तुमको कष्ट देकर ही पापक्षय होता है। तो जब तुम्हारी बहू तुम्हारे सामने तुम्हारा अपमान तिरस्कार अवहेलना झगड़ा द्वेष करने लगेगी, तुम अति दुखी होगी। और जब तुम दुखी होगी इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जन्मांतर ये पाप ये फल देकर जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ऐसी बहू को तो पहले धन्यवाद देना बेटा। और यदि अच्छी बहू आ गई वो क्या करेगी पता है? तुम्हारी प्रशंसा करती रहेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी प्रशंसा करेगी। परिणाम क्या होगा कि तुमको सुखानुभूति होगी, प्रसन्नता होगी। ये सुखानुभूति प्रसन्नता पुण्यक्षय का प्रतीक है। बोलो तुम क्या चाहते हो? पापक्षय हो जाए ये चाहते हो कि पुण्यक्षय हो जाए ये चाहते हो? माताओं क्या चाहते हो बोलो? पापक्षय। तो भगवान से प्रार्थना करना कि घर में बहू कैसा आवे, दुष्ट आवे, पापक्षय हो जाए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, पापक्षय हो जाए ये गलत कह रहे हो। वेदांत दर्शन पापक्षय ये प्रयोजन नहीं मानता। वेदांत दर्शन तो पुण्यक्षय भी मानता है। पुण्य और पाप दोनों क्षय हुए बिना आपका श्रवण किया हुआ निधिध्यासन फलीभूत नहीं होगा। पाप और पुण्य दोनों क्षय हुए बिना यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परमम साम्यम उपेति। पुण्य और पाप दोनों ही नष्ट होंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। केवल पापक्षय हुआ और पुण्य रह गया तो वही पुण्य भोगने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, पुण्यक्षय के बाद फिर वापस ही मृत्युलोक में आना पड़ेगा। शास्त्र तो तुम्हारे पास आई है। और पुण्यक्षय हो गया और पापक्षय हुआ नहीं तो पुण्यक्षय के बाद पापक्षय करने के लिए नरक जाना पड़ेगा। बोलो पुण्यक्षय करके पहले नरक जाना चाहते हो कि पापक्षय करके स्वर्ग जाना चाहते हो? पहले पापक्षय कराना चाहते हो कि पुण्यक्षय? बोलो पापक्षय। तो भगवान से प्रार्थना करना यदि तुम्हारा बेटा ब्याहने के लायक है तो क्या प्रार्थना करना? मैं सच कर रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सच कर रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। घर में नौकर कैसा चाहते हो तुम बोलो? अच्छा सेवा करने वाला चाहते हो कि आज्ञाकारी न होकर मालिक को ही सताने वाला चाहते हो? यदि नौकर मालिक को सताने लग गया तो ये समझ लेना मालिक के ही खाकर मालिक को ही सताने लगा और उस नौकर से तुम दुखी और पीड़ित हो गए तो ये समझ लेना कि वो हमारे पाप को क्षय करने के लिए आया है। बस भगवान ने पाप क्षय करने के लिए उसको भेजा है, प्रसन्नता से उसको रखना। संत कबीर ने तो कह दिया है कि निंदक नीर राखिए आंगन कुटीर छवाए, खाने भी दो रहने के लिए घर भी दो है? और उसको कहो कि तुम्हारा काम क्या है तो बोले खाली तुम मेरे दोष देखते रहना, कहां कहां मेरी कमी है, कहां कहां मेरे कमजोरियां हैं, उन सबका पता लगा लगा के मेरे सामने उन सबका वर्णन करते रहना ताकि दोष दर्शन से मेरा कमी कमजोरी क्षय हो जाए। प्रशंसक को सामने नहीं रखना, प्रशंसक को दूर रखना, क्योंकि प्रशंसक जो है अतिवादी होते हैं, जो नहीं है उसको भी कह देते हैं। निंदक सत्यवादी होता है, निंदक सत्यवादी होता है। तुम्हारी कमी कमजोरी जो नहीं है उसको निंदक कह ही नहीं सकता है, वो हिम्मत नहीं करेगा, और जहां कोई कमी कमजोरी होगी उसी पर वो दृष्टि रखता है तो उसी को उजागर कर देता है वो। तो इसीलिए सबसे तुम्हारा हमारा मित्र प्रशंसक खतरनाक है और निंदक हमारा परम मित्र है। तो हम कह रहे थे त्रिकालदर्शी की घटना, मां को कहा है? और बहू अच्छी आ गई तो तुम्हारे कचरा तो घर में ही रहेगा। उन्हें कहा कि वापस नहीं करेंगे, जन्मांतरीय पाप को तो क्षय करेगी नहीं, उल्टा पुण्य क्षय कर देगी है? ये कहने के बाद महाराज आपने तो हमको तो भ्रम में डाल दिया, ये तो आपने बहुत गड़बड़ कर दिया, भ्रम में डाल दिया महाराज। नहीं नहीं आप प्रार्थना करो महाराज, अच्छी बहू आवे। अब हमने कहा जैसे भी आए वो अच्छी बहू कहलाएगी, ये दृष्टि अनुसार सृष्टि होता है ना। तो प्रसंग क्या चल रहा है, सनत कुमारों की बात है। पुण्य पाप क्षय हो जाने के बाद सनत कुमार बचपन से ही, पैदा से ही, शुरू से ही ब्रह्म विचार में लग गए, और हम तो मरने के समय आते जा रहा है, ब्रह्म विचार के लिए फुर्सत नहीं है। तो घूमते घूमते नारद जी पहुंचे। छांदों के उपनिषद का प्रसंग है, यहां लोक गुरु की व्याख्या कर रहा हूं। भगवान शिव क्या है, उनका नाम लोक गुरु हो, तो प्रसंग वो क्यों लोक गुरु हुए भगवान शिव। तो नारद जी पहुंच गए तो उनके सत्संग में नारद जी भी बैठ गए। नारद जी भी बंधु है ना सनत कुमारों के, नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। सनत कुमारों सराह मानस पुत्र है, योनिज नहीं है, संकल्पज है। जिसकी प्रारब्ध होता है वो योनिज होता है, जिसकी प्रारब्ध नहीं होता वो संकल्पज होते हैं। तो नारद जी पहुंच गए और उनके सत्संग में बैठ गए तो बढ़िया ब्रह्म विचार चल रहा था। शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषिर परिभू स्वयंभू याथा तथ्यत्वार्थान भेदता शाश्वती व समाभ्या आदि आदि मंत्रों का व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या चल रही थी। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान आप लोगों को ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, किसने दिया है? मैं भी मानस पुत्र हूं, मुझे नहीं मिला, और तुमको कहां से मिला, किसने दिया? सनत कुमारों ने कहा कि किसी ने नहीं, ये तो हमारा तो जन्मजात सिद्ध है ये विद्या। नारद जी ने एक बात कही थी, जन्मजात सिद्ध होने पर भी शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता में लिखा है यद शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न तो सिद्धिम वापनोति न शांतिम न पराम गतिम न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि का उल्लंघन कोई नहीं करे, सब शास्त्र विधि के अनुसार ही विचरण करे। तो आपने गुरु किया कि नहीं? सनत कुमारों ने कहा था हमने किसी को गुरु नहीं किया है, हमको जरूरत ही नहीं गुरु करने की, हम स्वयं ज्ञानी हैं। नारद जी ने कहा कि नहीं, गुरु तो करना ही चाहिए। शास्त्र विधि ब्रह्म विद्या गुरुमुख से सुने बिना शास्त्र अपराध प्रत्यवाय लगेगा। गुरुमुख से सुनना ही चाहिए, महावाक्य गुरुमुख से सुनना ही चाहिए। किताब में पढ़ लिया और महावाक्य से ज्ञान हो गया, ये शास्त्र अपराध है, प्रज्ञा अपराध कहलाता है। बहुत बड़ा प्रज्ञा अपराध है। किताब में लिखा हुआ तुम्हारे जानते हुए भी गुरुमुख से महावाक्य की दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल सुन लिया, दीक्षा होती है। दीक्षा अलग चीज है, श्रवण अलग चीज है। मंत्रों की दीक्षा, मंत्र जानते हो इतनी मात्रा से काम नहीं चलेगा, मंत्रों की दीक्षा लेनी पड़ती है। महावाक्य आपने जानते हो इतनी मात्र से काम नहीं चलेगा, महावाक्य की दीक्षा ली जाती है। ये वैदिक सनातन धर्म में ही दीक्षा की परंपरा है, और किसी धर्म में दीक्षा की परंपरा नहीं है। तो नारद जी ने कहा तो तुम लोग गुरु कर लो, शास्त्र विधि पूरा हो जाएगा। इतने करके नारद जी तो चले गए। आप लोगों ने कई बार सुना हुआ प्रसंग है, फिर भी प्रासंगिक मैं कथा सुना देता हूं। तो सनत कुमारों के दिमाग में अब ये गुरु करने की बात तो कह गया नारद, ठीक कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा है, हमको कर लेनी चाहिए, लेकिन किसको गुरु बनाए? हमको जिसने पैदा किया है संकल्प से, तो उसको हम संकल्प पैदा करने वाले पिता कहेंगे, क्योंकि उससे बड़ा और कोई है ही नहीं दुनिया में। तो हम उन्हीं के पास जाते हैं और हमको दीक्षा दो कहेंगे, विधिवत श्रद्धा पूर्वक उनसे दीक्षा ले लेंगे, तो हमारी जो विद्या है, हमारा अनुभव है, वो शास्त्र विधि से प्रामाणिक होगा। चले गए ब्रह्मलोक सनत कुमार, और दूर से देखा तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा येन कुलाल वन नियमितम ब्रह्मांड भांडोदरे। ब्रह्मा जी तो इस तरह कर्म में लगे हुए थे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जीव लाइन में प्रारब्ध अनुसार शरीर लेने के लिए आए हैं, क्यों में खड़े हैं जीवात्माएं। और ब्रह्मा जी पंचमहाभूतों के मेटेरियल पदार्थ लेकर बैठे हैं, और जो जीव सामने आता है, महाराज हमको प्रारब्ध भोगने के लिए हमारे प्रारब्ध अनुसार हमको शरीर दो, यद भोगा यतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रय हुआ, हम प्रारब्ध भी भोगे और नया कर्म भी कर सके, ऐसा शरीर दो हमको। ब्रह्मा जी उनको शरीर देने से पहले देखते थे सूक्ष्म दृष्टि से, इसको कैसा शरीर देना है। अब यदि कुत्ते का शरीर देना हो तो एक सांचा बना रखा था, कुत्ते का लिया, वो पंचभूत का मेटेरियल उसमें डाल दिया। आप लोगों ने कहीं ईंट बनता हुआ देखा होगा ना, ईंट में बनाते समय में मिट्टी गीला बनाकर रखते हैं एक तरफ ढेर, और तो ईंट के एक सांचा, लकड़ी का सांचा होता है, वो गीली मिट्टी उसमें डालते हैं और ये थप थप कर देते हैं और उसको गिराते हैं, ईंट का बन गया डिजाइन, कुछ नहीं, गीली मिट्टी लकड़ी के सांचे में डाल दिया, हो गया उस डिजाइन का। तो जैसा डिजाइन बनाना है वैसे सांचे अलग अलग है, मेटेरियल तो मिट्टी तो वही है। इसीलिए कुत्ते का भी पंचमहाभूत का शरीर है और तुम्हारा भी पंचमहाभूत का शरीर है। कुत्ते के शरीर पंचमहाभूत से भिन्न शरीर नहीं है, हमारा शरीर पंचमहाभूतों से भिन्न नहीं है। पशु का शरीर, गाय का शरीर, भैंस का शरीर, प्राणी मात्रों का शरीर पंचीकृत पंचमहाभूत एक ही मेटेरियल से बना हुआ है, फिर आकार और डिजाइन में क्यों फर्क है? तो सांचे में फर्क है भाई। तो कुत्ता आ गया, इसको मनुष्य शरीर देना ठीक नहीं है, ये केवल भोग योनि के लायक है इसका प्रारब्ध, इसलिए भोग योनि के लिए यही सांचा है। कुत्ता लिया, कुत्ते का सांचा लिया, मिट्टी डाला, लिया और कहा कि घुस जा इसमें, बना दिया स्टेचू और कहा जीवात्मा को घुस जा इसमें जा। वो फट से घुस दिया तो कुत्ता चलने लगा, वो मूर्ति चलने लगा। हमारे मूर्तिकार बिचारे मूर्ति तो बना देते हैं, प्राण नहीं दे पाते, ब्रह्मा जी ऐसे मूर्तिकार हैं कि प्राण तो पहले से विद्यमान है, जीवन तो पहले से विद्यमान था, खाली मूर्ति बना दिया, कहा कि घुस जा तो घुस गया। ऐतरेय उपनिषद में ये प्रक्रिया है, ऐतरेय उपनिषद की प्रक्रिया ये जीव कैसे प्रवेश करता है। तो इसी तरह लगे हुए थे प्रपंच में। सनत कुमारों ने देखा कि ये इतने प्रपंच में लगा है, हम कहां विरक्त उर्धरेत निवृत्त मार्गी, कहां ये प्रवृत्ति में लगा हुआ है, इसका चेला बनेंगे तो कल से कहेगा तुम लोग भी लग जाओ काम में, तो ये इसका चेला तो बनना ठीक नहीं है भाई। फिर किसका चेला बनोगे? बोले इसका भी बाप पड़ा है ना वो विष्णु है, जिसके नाभि से इनका जन्म हुआ, तो उसके पास जाए। बोले कहां रहता है वो? बोले क्षीर सागर में सोता है वो। सोता है? बोले हाँ है। तो जाओ, वही क्षीर सागर पहुंच गए। अब तो क्या था, क्षीर सागर में जब नजदीक पहुंचे विष्णु को देखा तो और भी ज्यादा आपत्तिजनक अवस्था में थे। कहां सनत कुमार स्त्री की छाया का भी स्पर्श न करने वाले उर्धरेत ब्रह्मचारी, और कहां भगवान विष्णु, सारा वैभव अलंकार तो सारे शरीर में श्रृंगार के रूप में रखा है, वैजयंती माला मुकुट है, चार हाथ, और भूदेवी और श्रीदेवी उनके चरण दबा रहे हैं, क्या आनंद से लेटा हुआ है। अरे राम राम राम, ये तो और भी चौपट है, ये तो इतना विलासी है, इतना भोग प्रदान है ये, इसको कैसे गुरु बनाएंगे? चलो यहां से निकलो। अब फिर किसके पास जाए? बोले उसका भी एक बाप है, कहते हैं उसका भी एक बाप है। कौन है वो? बोले वो शिव जी है। वो कहां रहता है? बोले कैलाश पर्वत में रहता है। चलो वहां। तो पहुंचे, गए कैलाश, जा रहे थे, चढ़ाई बड़े मुश्किल से चढ़ाई करते हुए सनत कुमार वहां पहुंचे, है ना? तो जब वहां पहुंचे तो नजदीक पहुंचा तो भगवान शिव को देखा तो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। वामांगे च विराजति भूधर सुता, है गोद में, भूधर सुता पर्वत की पुत्री पार्वती को गोद में रखा हुआ है, और बाया हाथ आलिंगन किया हुआ है, उनके कंधे पर रखा हुआ है। अरे राम 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 राम। विष्णु ने तो थोड़ा दूर रखा था, जमीन में रखा था, उसने तो गोदई में ले रखा है, ये तो और चौपट है। हम जिसको नहीं चाहते थे वही सामने आ रहा है, जिसको महान कर रहे हैं उसी में ज्यादा दोष दिख रहा है। अब किसको गुरु बनाएं? इसको तो ऐसे भोगी और विलासी को तो गुरु बनाना ठीक नहीं है।